सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग पंचदशी के सातवें प्रकरण में हम लोगों ने 14वें श्लोक तक विचार, 21वें श्लोक तक क्या हम लोगों ने विचार किया और ये बताया कल हम लोगों ने कि ये जीव जो है माइक है, अर्थात चिदाभास माइक है, इंद्रजालगत वो माइक है। उसके लिए श्रुति प्रमाण दिया, जीवेशावाभासेन करोति, नृसिंह उत्तरतापनी उपनिषद का प्रमाण दिया। ये जीव और ईश ये कैसे है, भाषिक है अर्थात मिथ्या है। श्रुति प्रमाण के बाद अनुभव प्रमाण दिया, जैसे सुषुप्ति में, मूर्छा में, कोमा में, वहां पर क्या है, जो चिदाभास नहीं रहता। आप कहेंगे कि नहीं हम तो देख रहे, वो दूसरे के लिए बात नहीं, वो खुद के लिए चल रहे। जो मूर्छा में जाता है अथवा सुषुप्ति में जाता है उस समय में वो कुछ भी जानता नहीं है, और जो जानता ही नहीं तो मतलब क्या, उसके लिए वो वस्तु है ही नहीं, वस्तु मतलब समाप्त हो गई। तो मूर्छा में, निद्रा में, कोमा में वो अपने अपने लिए क्या है, वो समाप्त हुआ सा है। तो ये दृष्टांत दे करके समझाया, ये समझा करके क्या कहना चाहते हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि ये जब समझता है जीव ज्ञानी आत्मा, तो उस समय में वो किसी भी प्रकार से क्या है, भोगों की इच्छा नहीं करता है। जैसे कि मरणासन्न व्यक्ति विवाह की इच्छा नहीं करता है, ये बताया। ये बता करके फिर वो बताया कि वो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये कहने के लिए भी क्या लज्जित होता है। जब चिदाभास लज्जित होता है तो वो चिदाभास उस साक्षी में क्या है, आरोप नहीं कर सकता है कि साक्षी भी क्या है, भोगता है, ऐसा वो नहीं कह सकता है। इसी के विषय में यहां पर बताया। इसके बाद कहते हैं 21वें श्लोक में, इदानीं ज्ञानानंतरम साक्षिणो भोक्तृत्व अभाव कैमुति न्याय सिद्ध्यति इति आह। कहते हैं इस समय में ये जो ज्ञानी, जो भी ज्ञानी होगा, उसमें जो जीवात्मा है, उसका अपना जीवात्मा अर्थात चिदाभास उसका अपना, ज्ञान होने के बाद उस साक्ष्य में भोक्तृत्व का अभाव है, ऐसा कैमुतिक एक न्याय है। न्याय मतलब युक्ति, कहने की क्या बात है। इस तरह लोक व्यवहार में जो हम भाषा में बोलते हैं ना, अरे इसमें नहीं है तो इसमें होने की कहने की क्या बात, अर्थात नहीं। यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वम्, यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वम् मन्तुं जिहेत्ययम् तदा, मन्तुं जिहेत्ययम् तदा साक्षिण्यारूपयेदेतत्, साक्षिण्यारूपयेतत् इति कैव कथा वृथा, इति कैव कथा वृथा। यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मन्तुं जिहेति, जब अपने आप में क्या है, भोक्तृत्व कहने में, मानने में वो लज्जित होता है, शर्मा जाता है, कौन, चिदाभास। तो वो चिदाभास क्या है, साक्षिणी आरोपित, साक्ष में कैसे आरोप कर सकता है, वो आरोप नहीं कर सकता। यदि आरोप करेगा तो व्यर्थ है, किसी में कुछ आरोप करना है तो उसमें कोई फल मिलना चाहिए, यदि आरोप करके कोई फल न मिले तो वो व्यर्थ आरोप है। भाष्य देख लीजिए, अयम चिदाभास सस्यापि भोक्तृत्व मंतुम अहम भोक्ता इति। वो चिदाभास है, अपने आप को मैं भोक्ता हूं ऐसा जानने के लिए अथवा कहने के लिए वो लज्जित होता है। कैसे लज्जित होता है? अब यहां पर चिदाभास का मतलब क्या लेना है? अंतकरण विशिष्ट लेना है। तो अंतकरण विशिष्ट जो चिदाभास है उसमें इस तरह का विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि विचार करना किसका धर्म है? अंतकरण का। चिंतन करना, मनन करना किसका धर्म है? अंतकरण का। तो उस अंतकरण से विशिष्ट कौन है? वो चिदाभास। चिदाभास अंतकरण विशिष्ट है। उस चिदाभास में, वो चिदाभास का मतलब क्या होगा? आत्मा से युक्त जो अंतकरण, ऐसा चिदाभास लेना। क्या है? अंतकरण से विशिष्ट आत्मा, ये पूर्ण चिदाभास हो गया। उस समय में, उस अंतकरण में जो तादात्म्य किया हुआ जो आत्मा है, जब वो जान लेता है कि जब मुझ में ही भोक्तापन नहीं है, तो वो तो निरुपाधिक जो साक्षी, वो तो उसका तो किसी से कोई संबंध नहीं, ये असंग है। तो जो असंग साक्षी, उसमें भोक्तृत्व कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है, ये कह रहे हैं। विलज्जित तदा यदा एतत् स्वगतम भोक्तृत्वम साक्षिणी असंगे आरोपयेत। अर्थात अपने भीतर जब भोक्तृत्व नहीं है तो साक्षी में कैसे हो सकता है? यदि आरोप करेंगे तो व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए न कापी, इसलिए किसी भी प्रकार से क्या है, उस साक्षी में भोक्तृत्व नहीं रहता है। उक्तम अर्थम श्रुति आरूढ़ करोति। अब इसी अर्थ को क्या है, श्रुति में आरूढ़ होकर के ग्रंथकार कह रहे हैं। इत्यभिप्रीत्य भोक्तारम्, इत्यभिप्रीत्य भोक्तारम् आक्षीपत्य विशंकया, आक्षीपत्य विशंकया कस्य कामायेति ततः, कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो नहि, शरीरानुज्वरो नहि। इत्यभिप्रेत्य अर्थात कुठस्थ अथवा चिदाभास, इन दोनों में क्या है, भोक्तृत्व नहीं है इस अभिप्राय से। क्योंकि ये जो प्रकरण जिस मंत्र के ऊपर चला है, उस मंत्र के बारे में अभी यहां बता रहे हैं। क्या किस अभिप्राय से? इति अभिप्राय मतलब कुठस्थ में और चिदाभास में वास्तविक भोक्तृत्व है ही नहीं, इस अभिप्राय से। क्या? भोक्तारम अक्षिपति अविशंकया, अविशंकया अर्थात निरंकुश होकर के, शंका रहित होकर के, निर्भय होकर के, संशय रहित होकर के क्या है, आक्षिपति भोक्तारम। आक्षिपति अर्थात क्षेपण, फेंक देना। जो पहला मानता था अज्ञान अवस्था में कि ये भोक्ता ये करता है, इस बात को क्या है, फेंक रहा है वो अपने भीतर से, जो माना हुआ चीज को हटा रहा है। क्या? भोक्तारम, जो भोक्ता, मैं भोक्ता हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं करता हूं, ये जो पहले अज्ञान अवस्था में जो होता था, उस बात को क्या कर रहे, अब हटा रहे हैं। किसमें? ज्ञानी के, ज्ञानी में, कि अब उसमें ये इस तरह की कोई बातें होती नहीं है। न चिदाभास भोक्ता है और न ही साक्षी भोक्ता है, ये दोनों नहीं है। अभी शंका अर्थात निरंकुश होकर के, अभी कोई समस्या नहीं इसमें, कोई शंका नहीं, कोई द्विविधा नहीं है इसमें। ये समझ करके क्या आक्षिपति मतलब उसको हटा रहे फेंक रहे उस बात को। किसके द्वारा कस्य काम आई थी तथा शरीर अनु जरो नहीं। ये जो मंत्र आया है मूल इस प्रकरण का जिस के कारण ये प्रकरण उठा है उस मंत्र में यही बात कही है कस्य काम आया अर्थात किस मिथ्या भोक्ता के लिए किस मिथ्या वस्तु की इच्छा करते हैं अर्थात नहीं करते हैं कौन ज्ञानी वो जान रहा है सभी वस्तु क्या है मिथ्या है सभी वस्तु नाशवान है ये जान करके क्या है इस शरीर को उस वस्तु के लिए वो तपाता नहीं है मतलब उन वस्तुओं के लिए इस शरीर को व्यर्थ ही कष्ट नहीं देता है चुपचाप क्या है वो अपने स्वरूप में शांत रहता है स्थित रहता है। टीका देख लीजिए अनुज्वर मतलब संताप पीड़ा देना शरीर को ताप कष्ट देना अपने शरीर को और कष्ट देता नहीं अपने शरीर को क्योंकि जान लिया ना अब ये सभी वस्तु मिथ्या ही है और मिथ्या वस्तु के लिए क्या भी मतलब क्या शरीर को तपाना शरीर को परेशान करना है जिन वस्तुओं को क्या है प्राप्त करने से वो रहने वाली तो है ही नहीं है नाश होने वाली है तो जो नाश होने वाली वस्तु है उसके लिए इस शरीर को क्यों खपाना है तो इससे अच्छा कि चुपचाप शांत रहे जो प्रारब्ध में वो अपने आप तो आ ही जाएगा अपने सामने बस उसको क्या है साक्षी भाव से देखते रहे और जो उसका भोग है उसको भोग करके उसको समाप्त कर दे इस भाव से क्या वो शांत रहता है वो शरीर को पीड़ा नहीं देता। टीका देख लीजिए कस्य कामाय इति श्रुति ये जो श्रुति है कूटस्थस्य चिदाभासस्य वा पारमार्थिक भोक्तृत्व अभावम अभिप्रेत्य अभिशंकया शंका राहित्येन भोक्तारम आक्षिपति निराकरोति। कहते हैं कुठस्थस्य चिदाभासस्य कुठस्थ अथवा चिदाभास वा शब्द का अर्थ अथवा कुठस्थस्य अथवा चिदाभासस्य क्या है पारमार्थिक भोक्तृत्वम वास्तविक रूप में न चिदाभास में भोक्तृत्व है और न ही कुठस्थ में भोक्तृत्व दोनों में भी भोक्तृत्व नहीं है। इस अभाव को दिखाने के लिए इस अभिप्राय को दिखाना है कि दोनों में भी क्या है पारमार्थिक भोक्तृत्व का अभाव है ये इस अभिप्राय से उस श्रुति कह रही है कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत वहां पर बता दिया अभिप्रेत्य अभिशंकया अर्थात शंका राहित्येन अर्थात शंका को मिटाते हुए शंका रहित हो करके भोक्तारम आक्षिपति अर्थात उस भोक्तापन को क्या है आक्षिपति अर्थात निराकरोति उस भोक्तापन को क्या है हटा देता है कौन ज्ञानी निराकरण करना हटा देना फेंक देना जो पहले अज्ञान अवस्था में मैं भोक्ता हूं मैं करता हूं ऐसा जो मानता था स्वीकार करता था उसको हटा देता है कब ज्ञान अवस्था में जब ज्ञान हो जाता है उसमें भवतु एवं भोक्तृ आक्षेप ठीक है मान लीजिए उस भोक्तापन को उसने अपने भीतर से हटा दिया मैं भोक्ता नहीं हूं क्या उस ज्ञानी ने हटा दिया दोनों में चिदाभास से भी हटा दिया और कुठस्थ से भी हटा दिया तो इससे क्या आ गया तो कहते ततः किम प्रश्न किया उन्होंने ये जो आपने कहा है कि वो ज्ञानी अपने भीतर से चिदाभास में जो भोक्तृत्व आ रहा था उसको क्या है हटा देता है अब चिदाभास भोक्ता वास्तविक नहीं है और साक्षी तो है ही नहीं है ये जब उसने निर्णय कर लिया ये जान लिया और ये जो आप बता रहे इसे क्या मिला इसे क्या हुआ तो कहते आह तत इति मूल में जो है श्लोक में ततः शरीर अनुसरो नहीं अर्थात वो शरीर को तपाता नहीं है शरीर अनुज्वरो नहीं शरीर को व्यर्थ तपाता नहीं है यही इसका फल है किसी वस्तु को हम समझ लेते कि ये वस्तु, मैं इस वस्तु को प्राप्त करूं तो ये मुझे पीड़ा देगी, ऐसा ही जिसको समझ में आता है वो उस वस्तु को प्राप्त करेगा नहीं करेगा, क्यों अपने शरीर को उसमें लगाएगा, वो जान रहा है कि इससे क्या है, संताप है अथवा व्यर्थ है मेरे लिए, तो उसके लिए वो अपना शरीर को नहीं लगाता है। इसी तरह ज्ञानी भी जब जान लेता है कि भोक्ता चिदाभास नहीं है, भोक्ता कुटस्थ नहीं है, ये जानने मात्र से क्या हो जाता है, वो अपने शरीर को पीड़ा नहीं देता है। अथवा कहते हैं नहीं ज्वरो ज्वरणम संताप, उसको संताप होता नहीं जिसने जान लिया कि चिदाभास भोक्ता नहीं है, कुटस्थ भोक्ता नहीं है, ये जानने के बाद उसको संताप होता नहीं है। संताप क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो शरीर को स्थिर कर देता है, अब वो दौड़ता नहीं इधर उधर, जब दौड़ेगा नहीं तो शांत रहेगा अपने आप में। आगे कहता है तत्वविदः शरीर अनुज्वर अभावम दर्शयितुं शरीर भेदम तत्र तत्र ज्वर सद्भावम च दर्शयति। कहते हैं तत्वज्ञानी महापुरुष के जो तीन प्रकार के शरीर है, वो पहले जब ज्ञान, अब तो उसका अज्ञान शरीर तो समाप्त हो गया, किंतु अभी दो शरीर तो है ही उसके, कौन सा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, किंतु अब ये बताने जा रहे हैं तत्वज्ञानी लोग कि ये शरीर के भीतर ये तो ये स्थूल शरीर हो गया, उसके भीतर सूक्ष्म शरीर हो गया, उसके भीतर भी कारण शरीर हो गया, अब ये तीनों में अलग अलग किस्म का दुख है, अलग अलग प्रकार का दुख है, उस दुख को बताने जा रहे हैं कि ये स्थूल शरीर में कौन सा दुख होता है, सूक्ष्म शरीर में कौन सा दुख होता है और कारण शरीर में कौन सा दुख होता है, क्रम से वो बता रहे हैं। स्थूलं सूक्ष्मं कारणं च स्थूलं सूक्ष्मं कारणं च शरीरं त्रिविधं स्मृतम् शरीरं त्रिविधं स्मृतम् अवश्यं त्रिविधोस्तेव अवश्यं त्रिविधोस्तेव तत्र तत्रोचितो ज्वरः तत्र तत्रोचितो ज्वरः। कहते हैं स्थूलम सूक्ष्मम कारणम च शरीरम त्रिविधम स्मृतम, ऐसा क्या है स्मरण किया है, ऐसा कहा गया है कि क्या है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तीन प्रकार का शरीर है, जब तीन प्रकार का शरीर है तो उसकी तीन प्रकार की दुख भी होंगे, तो अवश्यम मतलब निश्चित रूप से क्या है त्रिविधो अस्ति एव तत्र तत्र उचितो ज्वर, तीन प्रकार का भी ज्वर होना ही चाहिए, जब तीन शरीर तो तीन प्रकार का ज्वर होगा, संताप होगा। ये संक्षेप में बता करके अब उसका विस्तार करते हैं। तत्र स्थूल शरीर ज्वरांश तावद आह, हाँ टिप्पणी में ये दिया जो शरीरम जो शब्द है ना ऊपर, उसके ऊपर एक एक नंबर है ना, तो उसका अर्थ किया शरीरम शब्द का अर्थ जो शरीरम शीर्यते इति शरीर, जो क्या होता है क्षीण होता जाता है, क्षरण होता जाता है जिसका, उसका नाम शरीर है, तो ये तीनों भी शरीर का क्या होता है क्षरण होता है, स्थूल शरीर का भी क्षरण है, सूक्ष्म शरीर का क्या है क्षरण, जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा आत्मज्ञान वैसे वैसे क्या हो जाएगा उसका भी क्षरण होता जाएगा, और जैसे जैसे ज्ञान आता जाएगा वैसे वैसे अज्ञान भी समाप्त होगा, अर्थात तीनों शरीर क्या है धीरे धीरे नष्ट होते हैं, दो शरीर ज्ञान के द्वारा और स्थूल शरीर काल के द्वारा, स्थूल शरीर को कौन मिटा रहा है, काल से ही तो ये हो रहा है, कौन सा काल, बरसात का काल है, गर्मी का काल है, शीत का काल है, ये तीनों ऋतु के माध्यम से क्या कर रहा है, काल है, शरीर को क्षीण कर रहा है। और रही आत्मा, सूक्ष्म शरीर और अज्ञान, ये तो हमको उसको मिटाना पड़ेगा, किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो आखिर वो तीनों की तीनों क्या हो जाते हैं, क्षरण हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। अब इस स्थूल शरीर के रोगों को बता रहा है, जिन रोगों के कारण वो कैसा हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कमजोर हो जाता है। वात पित्त श्लेष्म जन्य, वात पित्त श्लेष्म जन्य, व्याधय कोटिशस्तनौ, व्याधय कोटिशस्तनौ, दुर्गंधित्व कुरूपत्व, दुर्गंधित्व कुरूपत्व, दाह भंगादयस्तथा, दाह भंगादयस्तथा। पहले तो इसमें ये बता रहे कि ये जो स्थूल शरीर में किस कारण जोर आता है, वो पहले कारण को बता रहे। तो वात पित्त श्लेष्म जन्य, इस शरीर में जो भी रोग आते हैं वात पित्त और कफ के कारण आते हैं। यदि ये वात पित्त कफ समान होगा तो शरीर स्वस्थ है। इस वात पित्त कफ में यदि विषमता आ गई तो तुरंत क्या हो जाता है, रोग आ जाता है, पीड़ा हो जाती है। वात पित्त श्लेष्म जन्य कौन, व्याधयः, वात पित्त और कफ के कारण व्याधियां आती है। कितनी आती है, तो कोटिशः स्तनौ, इस शरीर में कोटि हजारों व्याधियां हैं। हम जो है नई नई, आज जो हम बचपन में नहीं सुनते थे, आज वो व्याधि क्या है, सुनने में आ रही है, अलग अलग व्याधि आ रही है। अब उसका नामकरण दे रहे, पर यहां तो शास्त्र तो जानता है, ऋषि मुनि ने जाना है कि हजारों व्याधियां करोड़ों व्याधियां है, पर उन्होंने नामकरण नहीं किया। समय समय पर क्या हो, अपने आप ही उसका नामकरण होता जाएगा, उस नामकरण से उस व्याधि को क्या है, पहचाना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एड्स नाम की व्याधि कोई जानता था 50 साल पहले, एड्स नाम की बीमारी क्या होती कोई जानता ही नहीं, डेंगू नाम की बीमारी कोई जानता था इसे 50 साल पहले, पर अब एक नाम उसको दे दिया गया, वो पहले भी थी, बस उस बीमारी का पोषक तत्व तो उस समय नहीं था, वो तत्व तो आज मिल रहा है तो आ गई वो बीमारी। कहने का तात्पर्य है कि वात पित्त कफ के कारण क्या होती है, बीमारियां आती है। इसका परिणाम क्या है, जब वो बीमारी आ जाती है तो दुर्गंधित्व कुरूपत्व, उसमें दुर्गंध आने लगता है, वो कुरूप होने लगता है, उस शरीर में दाह होने लगता है अथवा भंग होने लगता है। ये सब क्या है, उस व्याधियों का परिणाम है। और उसका परिणाम क्या हो गया, पीड़ा, दुर्गंध आ रही है तो पीड़ा तो हमको हो ही रही है, चाहे दूसरे को हो चाहे अपने को हो। और कुरूपत्व आ गया, अपने को भी पीड़ा दूसरे को भी पीड़ा, और दाह हो रहा है, अपने को दाह हो रहा तो दूसरे को भी पीड़ा हो रही है, अपने को भी पीड़ा हो रही है, भंग हो रहा है तब भी पीड़ा होती है। ये सब क्या है, पीड़ा, इन वात पित्त के विषमता के कारण व्याधियों के माध्यम से आती है। अब सूक्ष्म शरीर में ज्वर कौन सा है वो दिखा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर ज्वरान दर्शयती, सूक्ष्म शरीर में उन ज्वरों को क्या दिखा रहे हैं। काम क्रोधादय शांति, काम क्रोधादय शांति, दांत्याद्या लिंग देहगा, दांत्याद्या लिंग देहगा, ज्वराद्वयेपि बाधन्ते, ज्वराद्वयेपि बाधन्ते, प्राप्त्या प्राप्त्या नरम क्रमात्, प्राप्त्या प्राप्त्या नरम क्रमात्। अभी सूक्ष्म शरीर में ज्वर बताते हैं, वो ज्वर आता कैसे और वो क्या ज्वर है वो बता रहे। काम क्रोधादय, काम क्रोधादियों के द्वारा क्या आता है, ज्वर आता है। काम अर्थात इच्छा, सर्वसामान्य जब हम इच्छा करते हैं, चाहे जिस किसी की भी जब इच्छा करेंगे तो उस इच्छा की पूर्तति के लिए स्थूल शरीर को भी दौड़ाना पड़ेगा और मन को भी दौड़ाना पड़ेगा। और जब स्थूल शरीर और मन ये दोनों दौड़ेंगे तो कष्ट तो होगा ना, कष्ट तो होना ही है। क्रोध, अब इच्छा पूर्तति नहीं हुई तो क्रोध आ गया, उस क्रोध का परिणाम क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, है ना। ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो बीमारी आ गई बहुत सी। इच्छा पूर्ण नहीं हो गई, चिंता लगी है, अरे ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उस चिंता से क्या हो गया, बीमारी आ गई। तो इसका तात्पर्य ये दो शब्द को लिया उन्होंने, काम और क्रोध, उसके आगे दूसरी भी लिखा, लोभ मोह मद मत्सर, ये क्या करते हैं, बीमारियां ले आते हैं। तो इन काम क्रोधादियों के कारण बीमारियां आ रही है और शांति आदि न आने के कारण भी क्या बीमारियां आ रही है। काम क्रोध आने के कारण और शांति आदि मतलब शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये न आने के कारण अर्थात इनकी प्राप्ति न होने के कारण दुख है और काम क्रोधादियों की प्राप्ति के कारण दुख है अर्थात ज्वर है। तो काम क्रोधादय ये ज्वर का कारण भी हो रहे और कैसे प्राप्त हो करके, काम क्रोध आदि को प्राप्त हो गए तो ज्वर आ गया और शांति आदि प्राप्त नहीं हुए इसलिए भी क्या है, ज्वर आ गया। लिंग देह गहा, और ये कहां रहते हैं सब काम क्रोध आदि, सूक्ष्म शरीर में, लिंग शरीर में, अंतकरण में। शांति आदि भी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। ज्वरे द्वयेपि बाधन्ते, ये दोनों ज्वर क्या है, मनुष्य को हमेशा बंधन में डालते हैं, पीड़ा देते हैं। कैसे पीड़ा देते हैं, एक प्राप्त होकर की पीड़ा देते हैं और एक प्राप्त न होकर की पीड़ा देते हैं। प्राप्त्या अप्राप्त्या नरम क्रमात्, अर्थात मनुष्य को क्रम से एक प्राप्ति के द्वारा दुख है और एक अप्राप्ति के द्वारा दुख है। प्राप्ति किसकी, कामादियों की, अप्राप्ति किसकी, शांत्यादियों की। तो इन दोनों को यदि हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, काम क्रोधादियों को हटाना पड़ेगा और शांत्यादियों की प्राप्ति करनी पड़ेगी, उसको लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ज्वर मिट जाएगा। टीका देख लीजिए, काम शांत्यादि नाम च ज्वरम उपपादयति, कामादियों के द्वारा और शांत्यादियों के द्वारा जो है ज्वर प्राप्त होता है, वो कैसे प्राप्त होता है उसको दिखा रहे। द्वयेपि, द्वयेपि अर्थात द्विविधा अपि क्रमेण प्राप्ति अप्राप्तिभ्याम नरम बाधन्ते, दोनों भी क्या है मनुष्य को क्या है पीड़ा पहुंचा रहे हैं, एक प्राप्ति के द्वारा पीड़ा दे रहा है और एक अप्राप्ति के द्वारा पीड़ा दे रहा है। अतो ज्वर, इसलिए क्या है, ये ज्वर है साम्य ज्वर, ये दोनों समान ज्वर है, एक प्राप्ति के द्वारा ज्वर और एक अप्राप्ति द्वारा आने वाला ज्वर, ये दोनों ज्वर कैसे समान ही है। कोई ऐसा नहीं कि एक थोड़ा कम पीड़ा देने वाला है और एक थोड़ा ज्यादा पीड़ा देने वाला है, ऐसा नहीं, दोनों समान रूप से पीड़ा देने वाले हैं। कारण शरीरगत ज्वर, अब कारण शरीरगत जो ज्वर है उसके विषय में चर्चा करते हैं। छांदोग्य श्रुतौ उक्त इति आह, कारण शरीरगत जो ज्वर है उसके लिए छांदोग्य की जो श्रुति है उस श्रुति को श्लोक के रूप में क्या है ग्रंथकार लिख रहे कि कारण शरीर में जो ज्वर होता है वो क्या होता है, कैसा होता है। स्वं परं च न वित्यात्मा स्वं परं च न वित्यात्मा विनष्ट इव कारणे विनष्ट इव कारणे आगामी दुःख बीजं चेत् आगामी दुःख बीजं चेत् एतदिन्द्रेण दर्शितम् एतदिन्द्रेण दर्शितम् स्वं परं च न वेत्ति आत्मा विनष्टैव कारणे कारण अर्थात अज्ञान कारण शरीर मतलब अज्ञान। अब इस अज्ञान अवस्था में होता क्या है स्वं परं च न वेत्ति न वो अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। तो जब जानता ही नहीं है तो क्या हो जाता है उसका नाश हो जाता है आत्मा विनष्ट। तो आत्मा विनष्ट कैसे हो रहा है उसका नाश कैसे हो रहा है उसको पीड़ा कैसे हो रही है उस अज्ञानता के कारण न जानने के कारण क्या हो रहा है भविष्यत में कौन सा दुख है आने वाला है अथवा वर्तमान में जो दुख है इसका मूल कारण क्या है वो नहीं जान पा रहा है। किसी कारण अज्ञानता के कारण और अज्ञान ही शरीर है कारण शरीर का मतलब क्या अज्ञान। तो ये अज्ञान के कारण क्या हो रहा है भविष्य के दुख को मिटाने का भी हमारे पास कोई साधन नहीं है अथवा उसका ज्ञान नहीं है अथवा वर्तमान में जो दुख है ये क्यों आ गया उसको मिटाने का क्या तरीका है ये भी ज्ञान नहीं है। ये न होने के कारण क्या है ये कारण शरीर में भी क्या होता है इस कारण शरीर के कारण में क्या होता है पीड़ा होती है। दर्शितम ऐसा दिखाया है किसको इंद्र को किसने प्रजापति ने किसमें वो छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण देकर के यहां पर बता रहे ग्रंथकार टीका देख लीजिए स्वं परम इति नाहं खलु अयम एवं संप्रत्यात्मानं जानाति अयम अहमस्मीति। निश्चित रूप से क्या न अहम मैं कौन हूं संप्रति आत्मानं अपने आप को जानता नहीं है और वो दूसरे को भी नहीं जानता है यहां तो अपने को ले लिया उन्होंने संप्रति आत्मानं न जानाति अपनी आत्मा को जानता नहीं है अर्थात अपने आप को जानता नहीं है। आयम अहम इति क्या मैं यह हूं ऐसा क्या है अज्ञानी जीव जानता नहीं है जिसमें अज्ञान है उस अज्ञानता के कारण इस तरह की स्थिति है वो अपने आप को मैं यह हूं ये नहीं जान पा रहा है। नोवा एव इमानी भूतानि ये जो भूत है जितने भी पंचमहाभूत और उस पंचमहाभूत से उत्पन्न भौतिक जो शरीर इत्यादि ये सभी किसी को नहीं जानता है क्या नहीं जानता है तो विनाशम एव अपीति अपीतो भवति नाहमात्र भोग्यम पश्यामि इनका विनाश होगा या नहीं होगा कोई नहीं जान रहा है। और ये जो भोग्य है मेरे लिए भोग्य है क्या नहीं है ये सब चीजें कुछ जानता नहीं देख रहा है सभी वस्तुओं को सभी वस्तुओं को भोग्य के रूप में देखता है कोई भोग्य के रूप में नहीं देखता है कोई ये भी नहीं जानता कि ये मेरे लिए भोग्य है कई तरह का क्या है उसके भीतर अज्ञान है। उस अज्ञानता के कारण क्या है मान लीजिए उसको शरीर के लिए योग्य वस्तु जो है ये वस्तु शरीर के लिए योग्य है ऐसा नहीं जानता है तो उस वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाएगा उस समय में क्या होगी उसको पीड़ा होगी और ये शरीर के लिए वस्तु योग्य नहीं है इसे पीड़ा होगी ये नहीं जानेगा और उस वस्तु को ग्रहण करेगा तभी क्या होगा पीड़ा होगी उसको। तो कहता है इंद्र को बता रहे हैं कि हे इंद्र ये जो कारण शरीर है, अज्ञान है, इस अज्ञान का यही परिणाम है। वो अपने को भी नहीं जानता, दूसरी को भी नहीं जानता। न जानने का परिणाम उसका दुख है। इति वाक्येन स्व पर ज्ञान शून्यत्वम्। इस वाक्य के द्वारा क्या निर्णय हो रहा है? ये जो प्रमाण दिया है, इस प्रमाण के द्वारा ये निर्णय होता है, स्व अर्थात अपने आप को, पर मतलब दूसरे को, अपना भी और दूसरे का भी क्या है? ज्ञान नहीं है, ज्ञान शून्य। तो ज्ञान शून्यत्वम अज्ञानेन, ज्ञान की शून्यता क्यों है? ज्ञान बिल्कुल ही उसके भीतर नहीं है, क्यों है? तो कहते हैं अज्ञानेन नष्ट प्रायत्व। अज्ञान का, अज्ञान के कारण क्या है? उसका ज्ञान नष्ट हुआ सा है। परे द्यू आगामी दुख बीजम च। और ये अज्ञान किसका कारण है? आज और कल के जो दुख का वो बीज है, क्योंकि जानते नहीं है। यदि जानते तो हम आज के और कल के दुख की व्यवस्था करते, भाई इस दुख को हटाने की व्यवस्था हम करते, किंतु जानते ही नहीं है। ये दुख का क्या है? आज और कल वाले दुख का बीज है वो अज्ञान। इंद्रियेण शिष्येण गुरोः प्रजापतेः पुरोः पुरतो निवेदितम्। इंद्र जो शिष्य, उस इंद्र शिष्य को प्रजापति कौन? गुरु। उन्होंने क्या उनके सामने कहा कि हे इंद्र, ये अज्ञान ऐसी ऐसी नाम की चीज है। ये अज्ञान क्या करता है? भविष्य वर्तमान के दुखों को लाता है। अथवा ये दुख कहां से आ रहा है, किस कारण आ रहा है, इसको वो जानने नहीं देता है। एवं त्रिषु अपि देहेषु ज्वर अनभिधाय तेषां अपरिहार्यत्वम् आह। कहता है इस प्रकार से, ये जो तीन शरीरों में तीन प्रकार का ज्वर है, इसका कथन करके इनको हटाना क्या है? अपरिहार्य है। इसको हटाए बिना आप आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते है, अथवा इन तीनों को हटाए बिना आप जन्म मरण का चक्कर छोड़ नहीं सकते। जन्म मरण आना ही आना है। ये नहीं कि इसमें से किसी एक को हटाने से क्या हमारा जन्म मरण हटेगा, अथवा हमारा हमेशा के लिए दुख हटेगा, ऐसा नहीं है। ये तीनों को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के क्या है हम शांत हो सकते हैं। एते ज्वरा शरीरेषु, एते ज्वरा शरीरेषु, त्रिषु स्वाभाविका मताः, त्रिषु स्वाभाविका मताः, वियोगे तु ज्वरैस्तानि, वियोगे तु ज्वरैस्तानि शरीराण्येव नाशते, शरीराण्येव नाशते। अच्छा, ये जो ज्वर है, ये ज्वर कहीं से बाद में आए हैं क्या? तो कहते नहीं, ये ज्वर ये तीन शरीरों का क्या है? स्वभाव है, उसकी अपनी प्रकृति है। जैसे स्थूल शरीर का जो ज्वर है, वात पित्त के कारण आने वाला ज्वर है, तो ये आने वाला का मतलब क्या? वो उसका अपना प्रकृति है। जैसे ही वात पित्त कप में कम ज्यादा हो गया तो तुरंत ही उसमें क्या हो जाता है? वो आ जाता है। मतलब कहीं बाहर से आता ये बात नहीं, उसी के भीतर पड़ा है। मतलब वो उसका अपना प्रकृति है, स्वभाव है उसका। और जो जिसका स्वभाव, उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो फिर स्थूल शरीर का ज्वर मिटाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्थूल शरीर को ही हटाना पड़ेगा ना। स्थूल शरीर का ज्वर यदि हटाना है तो क्या हटाना पड़ेगा? स्थूल शरीर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति है ना। यही बता रहे, ये ते ज्वरा शरीरेषु, ये जो शरीर में ज्वर पड़े हुए है, त्रिषु स्वाभाविक काम आता है, ये स्वाभाविक है उसका। अर्थात उसका प्राकृतिक है, उसका अपना स्वभाव है, निज है वो। जैसे जल की शीतता कितने देर तक गर्म करने पर हटा सकते हैं आप, मान लीजिए 1 घंटा हमने जल को गर्म किया, क्या हमेशा के लिए उसकी शीतता हट गई? बस फिर 1 घंटे के बाद फिर जैसे तैसे दिखेगा। मतलब स्वभाव प्रकृति जिसकी जो है उसको हटाया नहीं जा सकता। तो फिर स्थूल शरीर का जोर मिटाना है तो स्थूल शरीर को ही हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार लिंग शरीर का जो ज्वर है वो कौन है? ये संताप, बीमारी आ जाना, संताप हो जाना, चिंता करना, ये सब क्या है? मानसिक रोग जिसको कहते हैं। तो मानसिक रोग वो मन का स्वभाव है अपना, वो प्रकृति उसकी, वो वहां से हटता नहीं है, बस उसका पोषक तत्व मिलते ही वो उद्भूत होता है। तो कहते हैं ये जो काम क्रोध आदियों के द्वारा जो ज्वर आ रहा है उसके भीतर, वो ज्वर यदि मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? लिंग शरीर को हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार अज्ञान के कारण जो आने वाला ज्वर, वो ज्वर किसका है? अपना स्वभाव प्रकृति, वो स्वाभाविक उसमें रहता है, तो उसको हटाने के लिए अज्ञान को ही हटाना पड़ेगा। तो ये तीनों को हटाने के लिए तीनों को हटाना है, तभी जाकर के क्या है, हम शांत हो सकते हैं। टीका देख लीजिए। वियोगे तो ज्वर ही स्थाने शरीराणी एवं नाशते। वियोगे अर्थात ज्वर का यदि वियोग हो जाता है तो शरीर भी नहीं रहेगा। क्या है? ज्वर का वियोग हो गया तो शरीर भी नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? वो उन शरीरों का अपना निज धर्म है, निज स्वभाव है, निज प्रकृति है। गुण और गुणी, जैसे कपड़े का जो सफेद रंग है, बोले इसको खत्म करना है, हमको हटा देना, तो करना क्या पड़ेगा? फिर नहीं, रंगने से तो कपड़ा हट नहीं रहा है ना, वो तो आपने उसके ऊपर दूसरा ढक दिया, दूसरा रंग, फिर उसको कॉस्टिक डाल दीजिए, रंग हट जाएगा, फिर सफेद दिखेगा। तो सफेद को ही मिटाना है तो करना क्या पड़ेगा? कपड़े को ही मिटा दीजिए, कपड़ा हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, तो सफेद रहेगा ही नहीं कुछ। तो गुण गुणी क्या रहते? साथ में रहते हैं। गुण हट गए तो गुणी हट जाएगा, गुणी हट जाए तो गुण हट जाएगा। तो इसी तरह यहां पर कह रहे हैं, ज्वर हट गया तो शरीर हट जाएगा। स्थूल शरीर का जो ज्वर है, वो ज्वर हटते ही स्थूल शरीर भी हट जाएगा, क्योंकि ज्वर के बिना स्थूल शरीर रह नहीं सकता। जैसे ये शरीर अन्न के बिना नहीं रह सकता, प्राण क्या है, हवा के बिना नहीं रह सकता, हवा नहीं है तो प्राण भी नहीं है। मतलब क्या हो गया? स्थूल शरीर का ज्वर स्थूल शरीर का पोषक तत्व है, किंतु ये दोनों हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए ज्वर को हटाने का मतलब ही स्थूल शरीर को हटाना है, इसी को लेकर के उन्होंने कह दिया स्वाभाविका, वो स्वाभाविक है उनका, वो हटने वाला नहीं है। तो इनको हटाने के लिए इन ज्वरों को हटा दीजिए, शरीर अपने आप ही हट जाएगा। शरीर आनी है वह नाशते, शरीर का नाश हो जाएगा। टीका देख लीजिए। त्रिषु अपि शरीरेषु प्रतीयमाना इति ज्वरा शरीरे सह उत्पन्नत्वेन स्वाभाविका सम्मता। कहते हैं त्रिषु शरीरेषु, तीनों शरीरों में जो प्रतीयमान कौन, एते ज्वरा, ये ज्वर है, सह उत्पन्न, साथ साथ ये ज्वर क्या उत्पन्न हो चुके हैं। तो फिर कहेंगे ऐसा तो दिखता नहीं, बाद बाद में क्या है, कालांतर में दिखता है, कुछ ऐसी चीज खा ली मान लीजिए तो उससे क्या है, बीमारी हो गई, तो बाद में आ गया, ऐसे हम कहते हैं ना। तो कहते बाद में नहीं आया, वो बस वहां सुप्त था, उसको प्रकाशित होने के लिए जो साधन था वो साधन उस समय मिला नहीं, जैसे ही साधन आ गया वहां से वो प्रकट हो गया। अब प्रकट कौन होगा? जो होगा वही तो प्रकट होगा, जो नहीं हो कहां से प्रकट होगा? जैसे तिल में जो तेल है वो प्रकट कब होता है? है तभी प्रकट होगा, बालू से तेल होगा क्या प्रकट? नहीं होगा। जो वस्तु है वही प्रकट होगी, जो वस्तु नहीं है वो प्रकट नहीं होगी। तो ये कहता है ये शरीर के साथ ही रोग आए हुए हैं, मतलब शरीर का अपना एक स्वभाव है, प्रकृति है। पर यह होगा कि जब उसका अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो वहां से वो प्रकट होता है, इतनी सी बात है। सम्मत है, ये क्या है? सर्वसम्मत है। स्वाभाविकत्वम व्यतिरेक मुखे न दृढ़ेति, ये स्वाभाविक है, ये व्यतिरिक मुख से बता रहे हैं। तो जहां जहां ज्वर है वहां वहां पर शरीर है, जहां जहां ज्वर नहीं है वहां वहां पर शरीर नहीं है। अथवा उल्टा करिए, जहां जहां शरीर है वहां वहां पर ज्वर है, जहां जहां शरीर नहीं वहां वहां पर ज्वर नहीं। तो एक अन्वय और एक व्यतिरिक, जहां जहां शरीर वहां वहां पर ज्वर, ये अन्वय हो गया। अब उसका व्यतिरिक करेंगे तो जहां जहां ज्वर नहीं है वहां वहां पर शरीर भी नहीं है, ये व्यतिरिक हो गया। व्यतिरिक मुख्य ने दृढ़ थी, उसी बात को व्यतिरिक मुख्य द्वारा उसका उसको दृढ़ कर रहे, किसको दृढ़ कर रहे, ये इसका स्वभाव है, ये दृढ़ कर रहे। यतः कारणादेभिर ज्वरैहि तेषां शरीराणां वियोगे सति तानि शरीरानि नाशते। जब ये कारण कौन है, ज्वर, इन ज्वरों का जब अभाव हो जाता है, तेषां शरीराणि वियोग, जब ज्वर हट गया तो उन ज्वर जिस शरीर के द्वारा आया था वो शरीर भी क्या है, समाप्त हो जाए। वियोगे सति तानि शरीराणि नाशते, शरीर का भी क्या होता है, नाश होता है। एव नैव भवन्ति अतः स्वाभाविका इत्यर्थ, इस कारण से ज्वर नहीं है तो शरीर भी नहीं है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये इसका स्वभाव है। चलिए आगे के विषय में कल करते हैं। हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।